शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बारी ओम शांति में अपने असली स्वरूप की स्मृति, फिर अपने शांति धाम की, घर की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति कि मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। तीसरे बारी ओम शांति, ज्ञान के सागर, सप्त पिता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जब हम आत्माओं की ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं, आत्मा को दिव्य दर्पण देते और साथ साथ दर्पण में देखने की दृष्टि भी देते। ज्ञान दर्पण है, भक्ति में जो भी हम भक्ति करते आए वो बेशक ज्ञान समझा, उसको ज्ञान है, भक्ति को ही ज्ञान समझा था। शास्त्रों की कथाएं, कहानियां, श्लोक, जो भी भक्ति की बातें हैं वो किसी दूसरे के नेत्र से नहीं देखी जाती। भक्ति है रिचुअल्स, जो सब कुछ सब कोई करते आए हैं, हम भी करते आए हैं, पर बिना समझ के। जैसे अगर मुझे अपना चेहरा देखना है तो क्या चाहिए? दर्पण चाहिए, पर दर्पण किसी नैनहीन को दे दो तो उसको अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अंधे को आंखें तो हैं पर दृष्टि नहीं है। तो बहुत भक्ति में दर्पण बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु बिना अपनी दृष्टि खोले, अब दृष्टि भी मिल गई, दर्पण भी मिल गया, पर अगर दर्पण पर धूल चढ़ी हुई है तो भी अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। अंधेरा है तो भी चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो बाबा हम बच्चों का तीसरा नेत्र भी खोलते हैं, साथ साथ दृष्टि में दिव्यता भरते हैं, ज्योत जगाते हैं, जिससे जब जब कोई चीज दिखाई ठीक पड़ने लगती है तो सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो भक्ति में श्रद्धा बहुत है परंतु नेत्र नहीं है, इसलिए अंधश्रद्धा कहा जाता है। भक्ति नहीं करेंगे डर लगता है श्राप न मिल जाए। तो ज्ञान में समझ मिली है तो जो कुछ भी करते आए थे बिना समझ के किया था, तो अब बाबा कहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इस सृष्टि के बेहद के नाटक में इन तीन चीजों का विशेष पाठ है। तो बाबा आकर के पहले ज्ञान देते हैं अथवा समझ देते हैं और उस समझ से बुद्धि का नेत्र जब खुलता है तो पहले अपना दर्शन, अभी आंखें मेरे अपने ही फेस का पार्ट है, आंखें अलग चीज नहीं है, आंखों द्वारा अपने आप को देखना। तो बाबा हम बच्चों को हमारा ही तीसरा नेत्र खोल के स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं अथवा सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, या दूसरे शब्द में कहेंगे कि बेहद का नाटक अथवा बेहद का ड्रामा रियल क्या है। पहले ऐसा ही था जैसे बचपन में कोई कार्टून देखते, कोई पिक्चर देखते, तो स्क्रीन पर छोटे बच्चे वो चीजों को रियल समझते हैं। जो स्क्रीन पर है वास्तव में वो रियल नहीं है, वो रियल चल रही है जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो बाबा हम बच्चों को आकर के रियलिटी क्या है, पिक्चर एक्चुअल रियल रियलिटी क्या है, भक्ति की भी, भक्ति कब शुरू हुई, फिर हम भटके कैसे भक्ति में और अंधश्रद्धा में अटक भी गए, जो भी कुछ कर्म करना करना ही है। तो ज्ञान मिलता है तो अंधश्रद्धा भी खत्म होती है और व्यर्थ से वैराग्य आ जाता है। बेहद का वैराग आने से फिर समझ जब मिलती है तो पुरानी चीजों का त्याग करना अथवा संस्कारों का परिवर्तन करना सहज होता है। इसलिए बाबा सतगुरु हमारी बुद्धि में सत्यता दे करके सत्कर्म सिखाते हैं, सदगति का ज्ञान देते हैं, अथवा ये कहेंगे कि कर्मों की गुह्य गति क्या है, वो ड्रामा क्या है और कर्म का क्या मतलब है, उस सब चीजों की समझ मिलती है, उसका नाम है पढ़ाई। तो बाबा शिक्षा देते अथवा पढ़ाई पढ़ाते, जिस पढ़ाई से आत्मा को अविनाशी कमाई, वैसे लौकिक कमाई साथ नहीं चलती, पर यह अविनाशी कमाई हमारे संस्कारों में भर जाती है और सारे कल्प के लिए कमाई हो जाती है। तो आज बाबा ये कमाई है, खजाना है, ज्ञान के रत्न है, जिनसे हम स्वयं ही जीवन को हीरे तुल्य बनाते हैं। पढ़ाई है, कमाई भी है, चढ़ाई भी है, और माया को जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, तो ये अहिंसक लड़ाई भी है। इसलिए गीता ज्ञान है अहिंसक लड़ाई का, यानी मन के संकल्पों को शुद्ध कैसे बनाए, अज्ञान अंधकार को कैसे मिटाए, गुण संपन्न कैसे बने। तो न केवल पढ़ाई है परंतु साथ साथ लक्ष्य बिल्कुल क्लियर मिलता है कि सारे कल्प में हम आत्मा श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन कैसे जिए। आज 17 तारीख की मुरली सुनते हैं, साकार मधुर महावाक्य हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है, कहां जमा होगा, किस रूप में, संस्कार और श्रेष्ठ कर्मों के रूप में। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? बृहस्पति की दशा, वृक्षपति बीज रूप बाप सतगुरु वरदान प्राप्त करने की दशा, वर्षा प्राप्त करने की दशा। ग्रहचारी व्यक्ति है, विघ्न पड़ते हैं, विघ्न विनाश होने की दशा। उत्तर है, जिन पर बृहस्पति की दशा है उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा, सतगुरु की शिक्षा पर होगा। दूसरी बात, वो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कभी फेल नहीं होंगे। फेल क्यों हो जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फेल क्यों हो जाते हैं? श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही फेल होते हैं, यानी रॉन्ग कर्म किया माना फेल हुए। उन पर फिर क्या राहु की दशा बैठ जाती है, यानी बहुत सारे विघ्न आते हैं फिर, अज्ञानता के कारण, श्रीमत का उल्लंघन करने के कारण राहु की दशा बैठ जाती। तो अब तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। भीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ले चल तू वहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल। तो दो बातें हैं, एक तो रिक्वेस्ट है पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनने की, दूसरी प्राप्ति के अनुभव की स्मृति। ले चल जहां पहले लेके गए थे, घर चले सुखधाम के चले। ओम शांति। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, ये है पाप आत्माओं की पुकार। अब तुमको पुकार रहा नहीं है क्योंकि तुम तो पावन बन रहे हो। तो ये धारणा करने की बात है, पाप कर्म से दूर ले जाने की शक्ति, ये धारणा की बात है। और ये धारणा बड़ा खजाना है, गुण ज्ञान शक्तियां ईश्वरीय वरदान, ये खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। तो बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं, परम शिक्षक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी ऊंची कमाई है। क्योंकि एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, क्या बनना है वो भी लक्ष्य है। सच्चा सच्चा सत्संग सारे कल्प में एक ही वारी होता है। तो सत के संग की का प्रूफ क्या है, सत का संग का रंग जब लगता है, अभी होली पर बाबा ने बताया ना, तो सत के संग से आत्मा पावन बन जाती है। ये सारे कल्प में एक ही वारी होता है, सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बारी होता है। और ये संग जब मिलता है तो पावन बनते हैं। किस लिए पुकारते हैं? हे पति पावन आओ। अब वो पुकारते रहते हैं, भक्ति में पुकारते रहते हैं, यहां तुम्हारे सामने पतित पावन सामने बैठे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। ले चल तू वहीं, ले चल चित चैन जहां पाए। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़े ही चैन है, सारी दुनिया ही बेचैन है। ये तो विशेष सागर है, कलयुग है ना, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी है। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, यानी विकारों से जन्म होता है। इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं। भक्ति में पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो पानी में स्नान करने से पावन होते हैं। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? भटकते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, धक्के खाते खाते सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बन जाते। 84 कारास तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, क्या राज मिला 84 जन्मों का राज क्या है? कि हम ही जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, वो 84 जन्म पूरा लेती हैं, साइकिल पूरे में पूरा सतयुग से लेकर के अंत तक, कलयुग के अंत तक पार हो जाती है। तो क्या राज समझाते हैं कि और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, वो बाद में आते हैं दूसरे धर्म वाले। तुम्हारे पास 84 जन्मों का चित्र बाबा सीढ़ी पर समझा रहे हैं, बड़ा अच्छा बना हुआ है, उसी का ज्ञान फिर कल्पवृक्ष में भी है और वर्ल्ड साइकिल में भी है। सीढ़ी का चित्र बाद में बना है तो बाबा इसको बार बार इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कल्पवृक्ष का चित्र भी है, गीता में भी वर्णन है, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर के किया, यह कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। बेहद के नाटक में फिर कलयुग के बाद ही सतयुग आता है, दुखधाम के बाद ही सुखधाम बनता है, ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो हूबहू होना ही है, ऐसे नहीं होकर के फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की ड्रामा, तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का पूरा चक्कर बैठा हुआ है, तो आत्मा सृष्टि चक्र में आ तो गई, आके फिर छूटना चाहती है, वापस नहीं आना चाहती, पर फिर भी वापस आती है। इसका मतलब है कि आत्मा परमात्मा में समाती नहीं, मोक्ष सदा के लिए नहीं मिलता है। इस 84 के चक्कर से कभी तुम छूट नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है फिर शुरू होती है, नहीं, यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। तो सृष्टि चक्र चरासी का चक्र अथवा सीढ़ी बहुत जरूरी है एक्सप्लेनेशन उसकी देवे तो। त्रिमूर्ति और गोला का चित्र तो मुख्य है ही, वो हिस्ट्री हॉल में बाबा के राइट हैंड साइड पर त्रिमूर्ति का चित्र और नीचे सृष्टि चक्र का चित्र है। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है कि हर एक युग में 1250 वर्ष का युग है। ये जैसे अंधों के लिए आईना है, 84 जन्म की पत्री, 84 जन्मों की जन्म पत्री का आईना है, यानी हमारा ही भविष्य क्या है, पास्ट क्या था, ये जैसे 84 जन्मों की कहानी का दर्पण है। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं, अभी तुम बच्चों पर गृहस्थ की दशा अविनाशी बैठी है। फिर है सारा पराई पर मदार, कोई पर गृहस्थ की दशा है, कोई पर शुक्र की दशा है, कोई पर राहु की दशा है, ओमन चेंज होता रहता है। ना पास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे ना, यानी अभी तो विघन हो गया। यहां भी ऐसे है, श्री मत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है, यानी बहुत समय, बहुत लंबा समय फिर वो विघन चलता रहता है राहु की दशा का। यह बृहस्पति की दशा फिर अविनाशी दशा है। परमात्मा जो देते हैं फिर उसका फल भी बहुत समय चलता है, यानी सतयुग संगम से लेके कलयुग के अंत तक वो प्राप्ति का युग है। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं बनाना चाहिए, बहाना नहीं देना चाहिए सेंटर दूर है, ये है वो है, मतलब कोई ना कोई कारण बताते हैं इसलिए पढ़ाई नहीं पढ़ने जाते। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो कितने धक्के खाते हैं, पहले तो लोग पैदल ही जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे, साधन ही वही था। अब ये तो सेंटर एक ही शहर में है जिसमें रहते हो, तो सेंटर पर क्यों नहीं जाते। ये तो बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, यूनिवर्सिटी है तो लक्ष्य भी बहुत ऊंचा होगा ना। तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो, इतनी ऊंची डिग्री मिलती है, ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कहे बहाना बनाए। एक तो क्या करूं, मेरा जॉब ऐसा है ना, फुर्सत नहीं मिलती है, घर के धंधे ऐसे है ना, फुर्सत नहीं मिलती है, एक बहाना तो ये है। दूसरा बहाना, हम बड़े दूर रहते हैं, अभी वो बहाना तो मिल चल नहीं सकता, घर बैठे पढ़ाई मिल रही है, फिर उसमें भी सुस्ती हो, ना पढ़े तो जरूर कमजोर हो जाएंगे ना। श्रीमत जो तारोज श्रीमत मिलती है तो ध्यान तो जाता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मिस हो जाएगी डायरेक्शन जो बाबा से मिल रहा है। फुर्सत नहीं मिलती है, दूर रहते हैं, तो बाप क्या कहेंगे, ये बच्चा लायक नहीं है। बाप ऊंचा उठाना चाहता है और ये अपना ही सत्यानाश कर देते हैं। सच्चाई अपने आप को घाटा डाल रहे हैं। ये पढ़ाई से ही शक्ति मिलती है, कमाई होती है। पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, ये गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। पवित्रता ये हमारी आत्मा की दिव्यता और सभ्यता स्वमान है, धर्म है, इसकी पालना करनी है। तो श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है, प्रवृत्ति में रहते भी बीच में ज्ञान तलवार हो, यानी ज्ञान है कि हम एक पिता परमात्मा की संतान है, एक बाप के बच्चे हैं। तो जिसके माँ बाप एक ही हो, बहन भाई की दृष्टि गंदी जाएगी क्या एक दूसरे के प्रति? वृत्ति बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। बहन भले कितनी भी हैंडसम ऊंचे पढ़ा हो, बहुत इनाम मिले हुए हो, सुंदर भी हो, उसको भाई को कभी ख्याल आएगा गंदा? उसके लिए खुशी होगी, रेस्पेक्ट होगी? और किसी लड़की की महिमा सुनेंगे तो मोहित हो जाएंगे। भाई हैंडसम कितना भी हो, फेमस हो, बहन की गंदी दृष्टि जाएगी क्या? तो जहां माँ बाप बीच में आ जाते हैं वहां पाप की दृष्टि नहीं रहती है। हम एक ही माता पिता के बच्चे हैं। यह रूहानियत की दृष्टि से आत्मा को सच्ची राह मिलती है अपने जीवन को पवित्र बनाने की। इसलिए पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है, बीच में ज्ञान की तलवार है, ज्ञान मिला है, समझ मिली है, आत्मिक भाव में रहने की शक्ति मिली है, हमको लक्ष्य भी मिला है, हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया है, पतित दुनिया के मालिक है, तो मोहताज हो गए, दिवाला निकल गया है पवित्रता का। वो देवताएं थे डबल सिरताज, आधा कलब बार लाइट का ताज उड़ जाता है, हीरे जड़े ताज भी है तो पवित्रता का ताज भी है। इस समय लाइट का ताज कोई पर नहीं है। तो जो धर्म स्थापक आते हैं, जो आत्मा पवित्र आती है, तो उनका ऑरा अथवा पवित्रता लाइट का ताज दिखाते हैं, निशानी। धर्म स्थापक जो है उन पर हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। इसने जन्म लिया, वो कर्म के हिसाब किताब से लिया। धर्म स्थापन करने के लिए आत्मा पवित्र धाम से आती है, तो पवित्रता की शक्ति लेकर के आती है कि पवित्र आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए वो ऑरा अथवा वो जो एनर्जी अथवा लाइट का साक्षात्कार होता है। पर ये सब भारत, यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे और फिर सिंगल ताज वाले राजाएं भी थे। तो द्वापर में पवित्रता का ताज सेपरेट हो गया, राजाई का ताज सेपरेट। राजा के पास धन का ताज है पर पवित्रता का ताज नहीं, क्योंकि विकारी बन गए। सन्यासी पवित्र रहते हैं पर राजाई नहीं है, तो सिंगल ताज है। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे और सिंगल ताज वाले राजाएं भी थे। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे, डबल सिर ताज देवी देवताओं के आगे, सिंगल ताज वाले राजा हैं, माथा टेकते हैं, मंदिर बनाते हैं अपने महल में, पूजा करते हैं उनकी, उनके सामने माथा क्यों टेकते हैं? है तो वो भी राजा है, क्योंकि वो पवित्र महाराजा और महारानी थे, तो पवित्रता की पूजा होती है, पवित्रता के कारण उनके सामने झुकते हैं। महाराजा राजा उससे बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है, राजाओं की सभाएं लगती हैं, महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार, कायदे से उनकी दरबार लगती है, ये भी दरबार लगी हुई है। इस दरबार में कौन बैठे हैं? ये कौन सी सभा है? ये गुप्त सभा, कौन सी सभा है? कौन सा सत्संग है? इसको वो तो राजाओं की दरबार है, उसमें नंबर वार राजाएं बैठे हैं, ये कौन सी मधुबन में कौन सा दरबार लगा हुआ है? जहां बाबा की मुरली चलती है ये कौन सा दरबार है? ये ईश्वरीय दरबार है, ये राजयोगियों की दरबार, राजा रानी बनने वालों की दरबार, राजयोग सीख करके देवता बनने की, पवित्र मन के फरिश्ता बनने की, इसीलिए इंद्र सभा है ये। इंद्र सभा तो राजा, इंद्र को राजाओं में से बड़ा राजा मानते और कहते वर्षा करने वाला है राजा, तो ज्ञान वर्षा यहाँ होती है, ये फरिश्तों की सभा है, ये ईश्वरीय दरबार है, इसके यादगार इनको इंद्र सभा भी कहा जाता है। तो तुम ज्ञान से फरिश्ते बनते हो, परियां बन जाते हो, दूसरा शब्द है परी, पवित्र, पवित्रता ही सुंदरता है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो, परियां बन जाते हो, फरिश्ते बन जाते हो, सुंदर बन जाते हो। तो ईश्वरीय दरबार तो एक अनोखी दरबार है, इसे ईश्वरीय दरबार है, इसको इंद्र सभा कहा जाता है, ज्ञान ज्ञान वर्षा होती है। तो तुम क्या बन जाते हो फिर? ज्ञान परियां बन जाते हो, खूबसूरत को परी कहा जाता है ना, पर ये खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी है, रियल ब्यूटी है, प्योरिटी की ब्यूटी, पवित्रता ही सुंदरता है, सच्ची सुंदरता यही है। तो बाबा ज्ञान वर्षा करके आत्मा को शुद्ध बनाते, पवित्र बनाते, शाम से सुंदर बना देते, नेचुरल ब्यूटी है, और नेचर ही बदल जाती है, संस्कार ही बदल जाते हैं। तुम ज्ञान से परियां बनते हो, खूबसूरत को परी कहा जाता है, राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए वो श्याम से सुंदर, उनको श्याम सुंदर कहते, फिर से श्याम सुंदर क्यों कहा? जब काम चिता पर बैठते हैं तो ब्यूटी खत्म हो जाती है, श्याम बन गए, काले बन गए। फिर जब काम द्वापर में, जब काम चिता पर बैठते हैं तो नेचुरल ब्यूटी नहीं रहती, तो भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं, द्वापर से लेकर के, वो तो कहानी तो भक्ति में है कि कृष्ण पहले काला नहीं था, वो गेंद खेलते खेलते को एक जो जो जमुना नदी थी उसमें जहरीला सांप रहता था, नाग रहता था, पानी जहरीला होता था तो कोई पी नहीं सकता था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इस सांप को जहर को खत्म करना है, तो गेंद खेलते खेलते वो गेंद नदी में डाल दी। अब मुझे तो गेंद लेने जाना है, वर्ल्ड, ये गेंद मीन्स वर्ल्ड को अपलिफ्ट करने की बात। तो वो नाग सोया हुआ था, वो नागिन कहती है चला जा, ये तो नाग जाग जाएगा, मैं तेरे को सारा धन देती हूँ, तुम चले जाओ नहीं तो ये तुमको काट लेगा। तो सांप ने फुफकार मारी, कृष्ण काला हो गया, सुंदर से श्याम भर गया। ये भक्ति की कहानी है, ये बेहद की स्टोरी है कि इस बेहद के सृष्टि चक्र में गेंद खेलते वर्ल्ड प्ले में द्वापर में विकारों का प्रभाव पड़ा। तो शास्त्रों में अज्ञान खूबसूरत परी पवित्र, फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो भिन्न भिन्न नाम रूप से श्याम बनते हैं। शास्त्रों में कि ये कोई बातें है नहीं, यानी उसका विस्तार भाव नहीं समझा। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीन चीजें हैं। उसमें ज्ञान है ऊंचे ते ऊंचा, अभी तुमको समझ मिली है, तुम अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो भक्ति से वैराग्य आ गया, अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो बेहद का वैराग है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग आ जाता है ना, उसको हद का वैराग कहेंगे, उनसे वैराग्य है। तो ये तो बेहद के वैराग्य की बात है, पुरानी दुनिया से ही वैराग्य है। अब बुद्धि में नई, हमारी बुद्धि नई दुनिया तरफ है, पुरानी दुनिया नरक और सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय, स्वर्ग पवित्र दुनिया, शिवाला माना पवित्र, वैश्यालय माना अपवित्र विषय विकारों वाली दुनिया। तो शिव बाबा की स्थापना की हुई दुनिया है स्वर्ग, इसलिए इसको कहेंगे शिवालय। तो एक बारी बाबा ने, इस मुरली में नहीं है पर दूसरी मुरली में था, चार शिवालय हैं। पहला शिवालय है परम धाम, जहां शिव का घर, आत्माओं का घर है शालिग्राम के साथ, वो शिवालय है। दूसरा शिवालय है स्वर्ग, वैश्यालय के कॉन्ट्रास्ट में। कलयुग की दुनिया वैश्यालय है, अभी तो चलता फिरता वैश्यालय, पहले तो कोई वैश्याओं की ड्रेस, वैश्याओं का जीवन वैश्यालय के एरिया में दिखाई पड़ता था, अभी तो चलते फिरते वैश्याएं नजर आती है, ड्रेस कैसी है, पिक्चर्स कैसी है, बताए विकारी। तो कलयुगी दुनिया विषय विकारों वाली दुनिया है, ये वैश्यालय है। और शिव बाबा फिर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं, तो वो है शिवालय कॉन्ट्रास्ट में, कलयुग की कॉन्ट्रास्ट में, पतित और पावन दुनिया के कॉन्ट्रास्ट में। और चौथा शिवालय है मंदिर, तथा तीसरा शिवालय है भक्ति में मंदिर शिवालय, और नेक्स्ट शिवालय है शिव बाबा ब्रह्म तन में आते हैं तो चैतन्य शिवालय, परमधाम शिवालय, फिर सतयुग शिवालय, फिर भक्ति का मंदिर शिवालय, शंकरालय नहीं कहते, जहां शिव की पूजा होती है उसको शिवालय कहते हैं। तो भक्ति का शिवालय, शिवालय का मंदिर जिसके अनेक अनेक नाम से पूजा, और चौथी ब्रह्मातन है शिवालय जिसमें शिव बाबा आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो शिवालय शिव बाबा की स्थापना की हुई है, यानी शिवालय स्वर्ग को। इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती, विकारों से वैराग नहीं आता, शादी बर्बादी करके गटर में गिरना चाहते हैं। तो मनुष्य तो सभी विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं, वो कोई सुख नहीं है। ये नहीं कि एक दो को स्नेह दिया, प्यार दिया, सुखी करते हैं, समान ही समाप्त हो जाता है, बंधन एस्पेक्ट सारी खत्म हो जाती है। एक दो को दुख देते हैं, अमृत छोड़ विष पीते हैं, इसलिए गुरु नानक ने भी कहा अमृत छोड़ विष काहे को खाए, अमृत मिल रहा है फिर जहर क्यों पीते हो। मंदिर में जाके कहते हैं विषय विकार मिटाओ, ये पाप कर्म हम कर रहे हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव, हमको देव बनाओ, हमारे पापों को खत्म करो, हे पतित पावनाओ। क्योंकि वहां दुख है, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, पर जो भी भक्ति में कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते, और तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहां भटक रही है, क्लास के बीच में बैठे हुए भी उबासी लेते रहेंगे, झुटका खाते रहेंगे, तो समझा जाता है कि बुद्धि कहां घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। वो भटकते थक जाती है बुद्धि, उबासी थकावट की निशानी है। कमाई है तो उदासी नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को एक दो बजे तक भी बैठे रहते हैं। ये बाबा एग्जाम्पल बताते हैं कि विदेश से जब शिप आता था तो पोर्ट पर मनुष्य आत्माओं के, अभी भी समझो मतलब एयरपोर्ट पर भी है, आधी रात को भी जो है प्लेन आता है तो जो भी दुकान है वो खुली रहती है ना, जागते रहते हैं ना, कमाई है तो जागते रहते हैं, वापसी नहीं देते। अरे ये तो यहां तो बाप कितना खजाना देते हैं, तो आलस लापरवाही उबासी कमाई नहीं हो रही है, तो ये घाटे की निशानी है। दीवाना मारने वाला गुटखा खाते रहते बहुत उबासी देते, तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, रोज बाबा रत्नों की खान भरता रहता है, तो कितना अटेंशन देना चाहिए। इतनी कमाई हो रही है और तुम गुटखा खा रहे हो, झटका खा रहे हो, कंफ्यूज अंदर बुद्धि में हो रहे हो, कितना अटेंशन देना चाहिए। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है, यहां बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। तुमको तो भट्टी में रहना होता है, कोई की याद ना आए, समझो कोई छह दिन भट्टी मेरा सात दिन के लिए आना होता था, एक हफ्ते की भट्टी जब बोलते हैं, जब सप्ताह बोलते हैं, पिछाड़ी में कुछ याद आया, चिट्ठी लिखी तो फेल। तब फोन तो नहीं होता था, पर बाबा कहते थे सप्ताह भर वहां से बिल्कुल डिटैच हो जाओ, फिर सात रोज फिर से शुरू करो। रोज भट्टी में डालते हैं, किसलिए भट्टी में डालते हैं कि तुम्हारी जो बीमारी है विकारों की वो निकल जावे, आत्मा साफ हो जावे, स्वच्छ हो जाए। तुम आत्मा अजाकल्प से महारोगी बने हो। आत्मा के रोग निकालने के लिए क्वारंटाइन में डालते हैं, बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सत्योग में ऐसे कभी नहीं होता। यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है और मरने समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं है, वहां तो समय पर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं कि अभी टाइम पूरा हुआ है, अभी हम शरीर छोड़ बच्चा बनेंगे। यहां भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि तुम ये बनते हो। ऐसे बहुतों का साक्षात्कार होता है और ज्ञान से भी जानते हैं, ज्ञान से भी बुद्धि ने समझा है कि हम बराबर बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है श्री राधे कृष्ण बनने की। बाबा ने कहा बाबा का एम लक्ष्य लक्ष्मी नारायण नहीं है, राधा कृष्ण है। कृष्ण बनने का ये मैं कल मिचनू बनूंगा। तो बाबा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण है, आप कहते मैं मिचनू बनूंगा। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण तो 25 साल बाद हो जाएगा ना, शादी होगी तो लक्ष्मी नारायण कहेंगे। तो वो जो पहला पीरियड प्योर इनोसेंस का है वो तो और भी ज्यादा पवित्र है, इसलिए मिचनू बनूंगा, कल ये बेबी कृष्ण बनूंगा। तो बाबा कहते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट है राधे कृष्ण बनने की, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधा कृष्ण। क्यों? कि पूरे 5000 वर्ष तो राधे कृष्ण से ही कहेंगे ना। साइकिल की बिगिनिंग तो कृष्ण के जन्म से ही होगी ना। लक्ष्मी नारायण तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं ना, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जाचती है। कृष्ण की महिमा ज्यादा है लक्ष्मी नारायण से भी। किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही सुफिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, ये पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है तो साथ साथ हॉस्पिटल भी है। तुम्हारे जो रोग हैं वो भी दूर हो रहे हैं और पढ़ाई कमाई भी हो रही है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है तो अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। जहां जो बहुत पैसे वाले हैं उनके पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य की जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते भी बुद्धि का योग वहां लगाओ, कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो योग लगाने की। हर बात देखनी होती है ना, तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध काम न करो। अशुद्धता बीमारी है, कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उनसे राय करो। हर एक बीमारी हर एक की अपनी अपनी है, तो बाबा सर्जन से अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो कि भाई ये मेरे में कमजोरी है, ये विकार है, अवगुण है, पूछ सकते हो इस हालत में क्या करना है। अटेंशन रखना है कोई विकर्म ना हो जावे। फिर दूसरी बात, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीदने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप चढ़ता है। तो पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। ये बेहद काविनाशी सर्जन है, बाबा इन बातों को दुनिया नहीं जानती, तुमको नॉलेज मिल रही है फिर भी योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल नहीं करते। तो बाबा जानते हैं बेशक बच्चे मेहनत करते हैं, फट से याद नहीं ठहरती, नंबर बार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कर्मातीत अवस्था पूरी होगी, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ बंद होता है, लड़ाई शुरू होती है बंद हो जाती है, पर लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई यानी वर्ल्ड वार नहीं लगेगी, थोड़ी थोड़ी लग करके बंद हो जाएगी। यह तो कोई भी नहीं जानते, राजाई स्थापन हो रही है। समझने में भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि है ना, तुम्हारे में भी जो सतो प्रधान अच्छी बुद्धि वाले हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तभी लाखों के अंदाज में होंगे, अभी तो कितना नंबर ज्यादा है ब्राह्मणों का, उसमें भी कोई सगे हैं कोई लगे हैं, कोई सच्चे ब्राह्मण है कोई स्टेप चिल्ड्रन है, सगे अच्छी सर्विस करेंगे, मां बाप की मत पर चलेंगे और स्टेप चिल्ड्रन स्टेप अवे माया रावण की मत पर चलेंगे, कुछ रावण की मत पर कुछ राम की मत पर, आधा समय राम आधा समय रावण लंगड़ा के चलते हैं। राम की मत पर भी चलते हैं तो रावण की मत पर भी चलते हैं, लंगड़े हैं। अच्छा बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो, स्वर्ग में चैन है, चैन ही चैन है, सुख आराम आई आराम है, दुख का नाम नहीं है। तो स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, अभी तो कलयुग है, यह स्वर्ग कहां से आया, इसका तरह स्वर्ग पधारा हम। तो तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है, स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि मैली बुद्धि वाले राक्षसी बुद्धि वाले नमन करते हैं। पवित्र बनने वालों का मान है, सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं, सन्यासी तो विकार से जन्म लेकर फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, सन्यासी को संपूर्ण निर्विकारी नहीं करेंगे, कहेंगे तुम देवता बन रहे हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो बाप से वर्षा ले रहे हैं पढ़ रहे हैं। यहां सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम नशा कायम रहता है लॉन्ग टाइम पर, और कोई का झट उड़ जाता है। कारण क्या है, संग दोष लग जाता है, फिर बस दशा स्थाई नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर पर ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहां गए, शराब आदि पिया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, खलास, ये संग दोष खराब कर देते हैं। हंस और बगले इकट्ठे नहीं रह सकते, पति हंस बनता पत्नी बगुला बन जाती, कहां कर स्त्री हंसनी बन जाती पति बगुला हो जाता, कहे पवित्र बनो तो मार खाएंगे। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन जाते, तो बाप तो कहते अपने को सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये दुख धाम है ना, अभी तो बहुत आफते आनी है। फिर देखना कैसे त्राई त्राई करते हैं, बचाओ बचाओ। बाप आया है तो हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर कहेंगे टू लेट। बाप स्वर्ग की वर्षा ही देने आते हैं, वह गवा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को लेकर के आओ, जो खुद समझकर औरों को समझा सके। पर बाबा कोई देखने की चीज तो नहीं है ना, ये तो अनुभव करने की चीज है। शिव बाबा कहां दिखाई पड़ता है? अपने आप को देखा है क्या? अपने जीवन से अनुभव करते हो ना, शांति क्या है, प्रेम क्या है, पवित्रता क्या है, सत्यता क्या है। उससे ऑटोमेटिकली जीवन दिखाई पड़ता है। अब फूल दिखाई पड़ता है, सुगंध दिखाई पड़ती है क्या? पर सुगंध से फूल का नाम सामने आ जाता है। तो सूक्ष्म है आत्मा, इसलिए उसको देखना मानो उनके गुणों को देखना। सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। समझा? विनाश कब होगा? जब सब कर्मातीत को पहुंचेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लड्डे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि योग बाप व नवी दुनिया तरफ लगा रहे, ध्यान रहे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए, शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई विकार की बीमारी है, अवगुण की बीमारी, अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। सेकंड पॉइंट, संग दोष बहुत खराब है, अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे एक्सप्लेनेशन, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन विश्व कल्याणकारी कब बनते हैं? सर्व बंधनों से मुक्त बनो और स्वतंत्र रहो। स्लोगन मैं और मेरापन, ये बेअभिमान का दरवाजा है। इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्ति शरण, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख क्या है? सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं। बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो आप कह रहे हो सच बोलते हो, वो सच नहीं है, वो सच लगेगा ही नहीं। अगर सच बोलते हैं तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता दिखाई पड़े, डिवाइन वर्चुअस में से दिखाई पड़े। कुछ भी सहन करो, सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध नहीं करो, जिद नहीं करो। ओम शांति।
सभी भाई बहनों से निवेदन है थोड़ी देर बैठे रहेंगे। अभी पहले दीदी जी विदेशी भाई बहनों का कार्यक्रम सुनाएंगे आज का। उसके बाद गुजरात राजकोट से एक छोटी सी कन्या कुमारी ध्यानी हम सभी के बीच में आएगी और वो एक सुंदर संदेश अपने नृत्य के द्वारा हमको देगी कि मेरा प्यारा शिव बाबा आ गया है। तो इसलिए सभी बैठे रहेंगे। और एक समाचार भी आप सभी को देना है, हम गुड न्यूज भी कह सकते हैं। हमारे आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई जी, आप सभी जानते हैं लगभग 2 महीनों से भाई साहब अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और काफी अच्छी तरह अभी उनकी रिकवरी हो चुकी है। और कल दोपहर को 1 बजे भाई साहब को यहां मधुबन घर लाया गया ग्लोबल हॉस्पिटल में। हाथाली बजा सकते हैं। और विशेष डॉक्टर्स की तरफ से और आशा दीदी की तरफ से सभी से अनुरोध है कि कोई भी इस तरह का आग्रह ना करे कि भाई साहब से मिलने जाए। अभी उनकी तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन का डर बना रहता है, इसीलिए कोई मिलने ना जाए। यहां से ही हम अपने योग के प्रकंपन उनको भेजते रहेंगे और जल्दी ही भाई साहब ठीक हो जाएंगे।